ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संघीय निजामती सेवा विधेयक के निराकरण के लिए राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ने गठित की उपसमिति। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर नेपाल में भी विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। बीते माघ महीने में देश भर में हुई 470 आगलगी की घटनाओं में 22 लोगों की हुई मौत की नेपाल पुलिस ने दी जानकारी। और बसों में सीरियल धमाकों के बाद भड़का इसराइल। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ने निजामती सेवा विधेयक के निराकरण के लिए 11 सदस्यों की उपसमिति गठित की है। राज्य व्यवस्था समिति के सभापति रामहरि खतिवड़ा ने विधेयक पर विचार विमर्श के निराकरण के लिए उपसमिति गठित करने के प्रस्ताव को समिति ने पारित किया। विधेयक का सहमति के आधार पर निराकरण करने के लिए नेपाली कांग्रेस के सांसद धीरेन्द्र प्रसाद बड़ू के संयोजकत्व में 11 सदस्यों की उपसमिति गठित की गई है। बता दें कि उपसमिति को इस काम के लिए एक महीने का समय दिया गया है। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान की 15वीं बैठक ने चालू आर्थिक वर्ष की योजना, कार्यक्रम और बजट को स्वीकृत किया है। प्रधानमंत्री निवास पालवाटार में हुई बैठक ने प्रतिष्ठान की 9वीं सभा बैठक से स्वीकृत बहुवर्षीय गुरी योजना को क्रियान्वित करने के लिए नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय में पेश करने की अनुमति दी है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने कहा कि कोई भी धर्म या संप्रदाय हो, सबका मानव सेवा ही सबका लक्ष्य मानव सेवा ही है। कृष्ण प्रणामी धर्मशाला निर्माण समिति द्वारा धरान में निर्मित धर्मशाला के उद्घाटन के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पोडेल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों ने सेवा को अत्यधिक महत्व और प्रधानता दी है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस नेपाल सहित विश्व के विभिन्न देशों में भाषिक जागरूकता, सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद प्रवर्धन संबंधी विविध कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया। बता दें कि सन 1999 के नवंबर में बांग्लादेश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के लिए किए गए प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अनुमोदित किया था। इसी के बाद यह दिवस मनाया जाने लगा। नेपाल की विभिन्न भाषाओं के वर्ण निर्धारण के लिए ध्वनि विश्लेषण करने के लिए नेपाल में पहली बार भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के संदर्भ से जोड़कर आज भाषा आयोग में एक समारोह आयोजित कर स्थापित की गई भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री पांडे ने किया। नेकपा माओवादी केंद्र जनता के साथ संबंध सुधार के लिए इसी फागुन के 12 गते से तराई मधेश जागरण अभियान संचालित करने की तैयारी में है। माओवादी केंद्र ने आज पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिस टाडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर हुलाकी राजमार्ग को आधार बनाकर तराई मधेश जागरण अभियान संचालित करने की जानकारी दी। माओवादी केंद्र के उपाध्यक्ष अग्नि प्रसाद सापकोटा ने बताया कि झापा से शुरू होने वाला तराई मधेश की समस्या पर केंद्रित यह अभियान तराई मधेश की समस्या पर केंद्रित होगा और चैत 8 गते कंचनपुर पहुंचकर संपन्न होगा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार को कुचलने का काम सरकार नहीं करेगी। आज काठमांडू में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के हनन का आरोप लगाते हुए सामाजिक संजाल विधेयक के विरुद्ध हल्ला फैलाने जैसे काम जो हो रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि पार्टी ने पहचान और अधिकार के मुद्दों को कभी नहीं छोड़ा है। आज पोखरा में तमो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा नेपाल की राष्ट्रीय सभा का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि संविधान निर्माण के दौरान पहचान के संदर्भ में पार्टी ने भिन्न मत दर्ज किया है। कार्यक्रम में उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख ही राजनीतिक स्थायित्व और भ्रष्टाचार का अंत कर सुशासन बहाल कर सकता है। माघ महीने में देशभर आगलगी की 478 घटनाएं घटित होने की जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालय ने दी है। आगलगी की उन घटनाओं में 22 लोगों की मौत हुई और 87 लोग घायल हुए, वहीं 17 परिवार विस्थापित हो गए। ये बात नेपाल प्रहरी के प्रवक्ता डीआईजी दिनेश कुमार आचार्य ने बताई। उन्होंने बताया कि आगलगी से 68 घरों व 66 मवेशी खानों में क्षति हुई है और इन घटनाओं में 18 करोड़ 48 लाख से अधिक की आर्थिक क्षति हुई है। आंदोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ और स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के बीच 9 सूत्रीय सहमति हुई है। आज मंत्रालय में हुई वार्ता के बाद स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल की उपस्थिति में 9 सूत्रीय सहमति हुई। सहमति के बाद संघ द्वारा आह्वान किए गए आंदोलन के सभी कार्यक्रम आज से ही वापस लेने और चिकित्सकों के नियमित काम पर लौटने की बात हुई है। ऑनलाइन स्कैमिंग के काम में लगाए गए 5 नेपाली नागरिकों का म्यांमार के मेवाड़ी से उद्धार किया गया है। बैंकॉक स्थित नेपाली राजदूतावास ने बताया कि थाईलैंड सरकार के सहयोग में म्यांमार के मेवाड़ी से उद्धार कर 4 पुरुषों और 1 महिला नेपाली नागरिक को नेपाल वापस भेजा गया है। दूतावास ने श्रम स्वीकृति लेकर ही वैदेशिक रोजगारी में जाने का नेपाली नागरिकों से पुनः अनुरोध किया है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण पीएसपी नेपाल से प्रसारित सामग्रियों को और अधिक जनता केंद्रित बनाने की बात पर जोर दिया गया। पीएसपी नेपाल की आगामी कार्यदिशा संबंध में आज रेडियो नेपाल में आयोजित अंतर्क्रिया कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेंद्र विष्ट ने कहा कि कर्मचारियों को खुद को रूपांतरित करते हुए आगे बढ़ना होगा। उन्होंने बताया कि पीएसपी के क्रियान्वयन के लिए नियमावली की तैयारी और अन्य नीतिगत व्यवस्था के काम हो रहे हैं। स्वदेश में रोजगार न मिलने के बाद कंचनपुर की कृष्णपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 2 गुनिया फाटा के 2 दर्जन से ज्यादा परिवार घर पर ताला लगाकर काम की खोज में भारत चले गए हैं। परंपरागत पेशा व्यवसाय छोड़कर वैकल्पिक रूप में मजदूरी करते आ रहे वादी परिवारों को वो भी न मिलने के कारण जीविकोपार्जन के लिए बाल बच्चों को लेकर भारत जाना पड़ा। ये बात वादी अगुवा पदम राणा वादी ने बताई। उन्होंने कहा कि हुनर पर आधारित रोजगार के अवसर सृजित कर सहज में ही बिना ब्याज के पूंजी मुहैया कराने की व्यवस्था अगर सरकार करती तो दूसरों के देश जाकर जोखिम वाले मजदूरी करने कोई नहीं जाता। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। 3 बसों में सीरियल धमाकों के बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने सेना को वेस्ट बैंक में शरणार्थी शिविरों में छापे मारने का आदेश दिया है। इसराइल को शक है कि यहां आतंकी छिपे हो सकते हैं। रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा कि फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठनों ने इसराइल में नागरिक आबादी के खिलाफ गुश दान क्षेत्र में हमलों की कोशिश की। उन्होंने आईडीएफ को तुलकरम यहूदिया और सामरिया के सभी शरणार्थी शिविरों में अभियान तेज करने का निर्देश दिया है। उधर इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने गुरुवार को तेल अवीव के करीब बसों में बम धमाकों के बाद वेस्ट बैंक में गहन तलाशी अभियान चलाने का निर्देश दिया था। बसों में धमाकों को पीएम कार्यालय ने एक संदिग्ध आतंकवादी हमला कहा। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक धमाकों में किसी के घायल होने की अभी तक खबर नहीं है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संघीय निजामती सेवा विधेयक के निराकरण के लिए राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ने गठित की उपसमिति। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर नेपाल में भी विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। बीते माघ महीने में देशभर में हुई 470 आगलगी की घटनाओं में 22 लोगों की हुई मौत की नेपाल पुलिस ने दी जानकारी। और बसों में सीरियल धमाकों के बाद भड़का इसराइल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।